पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से तंग आ चुकी है और उसे दूर जाने का फैसला करती है। रुद्र उसे जाने देता है लेकिन चेतावनी भी देता है। इस अध्याय में रूही अनाथ आश्रम जाती है और देखती है कि उसे बंद किया जा रहा है। वो अधिकारियों से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। रूही को समझ आ जाता है कि रुद्र ने ही सब कुछ किया है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 78। अब आगे उन ऑफिसर की बात सुनकर रूही को काफ़ी गुस्सा आता है कि वे इतने सारे अनाथ लोगों को बेसहारा कर सकते हैं लेकिन उस इंसान को मना नहीं कर सकते। जिसे सुन रूही गुस्से में बोली, ऐसा कौन है जिसे आप लोग मना नहीं कर सकते? एक काम कीजिए, आप मुझसे उनसे बात करवाइए या मुझे उनके पास ले चलिए। मैं खुद उस इंसान से बात कर लूंगी जिसने इतने सारे लोगों से सिर से छत छीनने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। रूही की बात सुनकर ऑफिसर कुछ बोलते उसके पहले ही दिशा रूही को अपनी तरफ कर गुस्से में बोली, रूही ये तो क्या बोल रही है? तू किसी से भी कहीं पर भी मिलने नहीं जाएगी। जहां पर भी जाना होगा वहां मैं जाऊंगी। तू अभी के लिए सिंघानिया विला वापस चली जा। मैं यहां पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। दिशा की बात सुनकर रूही बोली, दी मैं अब सिंघानिया विला वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, इसलिए अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो आप भी चलिए। हम दोनों मिलकर उस आदमी से बात कर लेंगे। रूही की बात सुनकर दिशा कुछ बोलती उसके पहले ही वे ऑफिसर बोला, मैडम अगर आप लोगों को चलना है तो जल्दी चलिए। वे हमेशा फ्री नहीं रहते, उनसे मिलने के लिए महीनों पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैं उन्हें जानता हूं तो शायद वे आप लोगों से मिलने के लिए मान जाएं, वरना आप लोग इसी तरह लेट करेंगी तो आपके हाथों से ये मौका निकल जाएगा। फिर आपको उनसे मिलने के लिए महीनों इंतजार करना होगा। ऑफिसर की बात सुनकर रूही बोली, नहीं नहीं हम चल रहे हैं, जल्दी चलिए। इतना बोल वे दिशा का हाथ पकड़ उन ऑफिसर के साथ जाने लगती हैं। तभी वहां पर सरोजिनी आते हुए दिशा और रूही को देख धमकी देते हुए बोली, तुम दोनों लड़कियां जा तो रही हो मगर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम दोनों उस आदमी से ये अनाथ आश्रम किसी भी हालत में वापस लेकर आना, चाहे उसके लिए तुम दोनों को उसके पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, समझी? अगर तुम लोग उस आदमी से ये अनाथ आश्रम वापस लेकर नहीं आई तो याद रखना मैं इन अनाथ बच्चों और इन बूढ़े आदमियों को खुद ही अपने हाथों से मार दूंगी, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सब खुद बखुद भूख प्यास से मर जाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ ये अनाथ आश्रम उस इंसान से वापस लेकर आना, वरना इन सबकी मौत की जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगी। सरोजिनी की जहरीली बात सुनकर रूही का खून खौलने लगा। ये इस तरह कैसे सबसे मरने की बात बोल सकती हैं? इसलिए वे गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि दिशा रूही का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए आगे ले जाते हुए बोली, रूही शांत हो जा, तुझे मालूम है ना कि ये औरत कैसी है, फिर तू क्यों अपना खून जलाती रहती है। इतना बोल वे रूही को ऑफिसर की गाड़ी में बैठा खुद बैठ जाती है। वहीं दिशा की बात सुनकर रूही कुछ भी नहीं बोलती मगर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वे यहाँ आने से पहले ये सोचकर आई थी कि आज वे दिशा के साथ मिलकर पार्टी करेगी, कि वे उस इंसान से आज़ाद हो गई, आज पूरा दिन वे खुशी खुशी बिताएगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। वहीं ऑफिसर दोनों लड़कियों को बैठते हुए देखता है तो गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। आधे घंटे बाद ऑफिसर की गाड़ी एक बड़े के फार्म हाउस के आगे आकर रुकती है, जिसे देख वे रूही और दिशा को देख बोला, मैडम इसके आगे अब मैं नहीं जा सकता, यहाँ से अंदर आपको खुद ही जाना होगा, अनाथ आश्रम जिन्होंने खरीदा है वो अंदर ही है। ऑफिसर की बात सुनकर रूही और दिशा हाँ में सिर हिला गाड़ी से उतर जाती हैं और फार्म हाउस के अंदर चली जाती हैं। वहाँ के गार्ड भी काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ गेट खोल देते हैं, जिसके रूही और दिशा को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। रूही और दिशा दोनों देखती हैं कि ये फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस फार्म हाउस को देख साफ बताया जा सकता है कि इस फार्म हाउस का मालिक काफ़ी ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन रूही और दिशा इन सब पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर चली जाती हैं तो देखती हैं कि ये फार्म हाउस बाहर से जितना ज़्यादा खूबसूरत था उसके कहीं ज़्यादा खूबसूरत अंदर से भी था, और वहाँ की हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी, जिसे देख एक पल के लिए दोनों वहाँ की खूबसूरती में खोसी जाती हैं। तभी वहाँ एक लेडी स्टाफ आकर बोली, हेलो मैम आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर दोनों होश में आती हैं और उसे देख बोली, जी हमें आपके बॉस से मिलना है, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। दिशा की बात सुनकर वे लेडी स्टाफ बोली, जी मैम बॉस आप लोगों के आने का ही इंतजार कर रहे थे, उन्हें पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आप लोग आ रही हैं, लेकिन आप दोनों नहीं जा सकती, बॉस अभी सिर्फ एक से ही मिलेंगे, इसलिए एक लोग यहीं बैठकर इंतजार करिए। उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर रूही बोली, ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। रूही की बात सुनकर दिशा बोली, रूही ये तो क्या बोल रही है, मैं हूँ ना मैं बात कर लूँगी, तू चुपचाप यहाँ बैठ। दिशा और रूही दोनों ही इस बात पर बहस कर ही रहे थे, तभी एक और सर्वेंट आकर दिशा के ड्रेस का जानबूझकर जूस गिरा देती है, जिसे देख दिशा अपने ड्रेस से जूस साफ करने लगती है। वहीं वे सर्वेंट दिशा को देखती हुए बोली, सॉरी मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, आप प्लीज मेरे साथ चलिए मैं इसे क्लीन करवा देती हूँ वरना आपके कपड़ों पर दाग पड़ जाएगा। दिशा उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सिर हिला उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी लेडी स्टाफ रूही को देख बोली, मैडम आप जल्दी चलिए क्योंकि हमारे बॉस को इंतजार करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, कहीं ऐसा ना हो कि वे आपसे मिलने से ही मना कर दे। उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर रूही जल्दी से बोली, नहीं नहीं आप मुझे उनके पास जल्दी ले चलिए, मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। इतना बोल रूही उस लेडी स्टाफ के साथ उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर में वे लेडी स्टाफ रूही को लेकर एक दरवाजे के पास पहुंचती हैं और रूही को देख बोली, मैम आप यहाँ से खुद ही अंदर चली जाइए क्योंकि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है।
उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर रूही अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख वे लेडी स्टाफ वहाँ से चली जाती है। वहीं उस लेडी स्टाफ के जाते ही रूही दरवाजे को खोल अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाती है वैसे ही उसकी आंखों में डर नजर आने लगता है।